पृष्ठ संख्या 102, चतुर्थ अंक। विस्मृता अभिनयम् सर्वं यत् पुरातन वेदितम् शशाप भरतः कोपात वियोगात् तस्य भूतले। पद्म पुराण। एष दीर्घायुरायुर्जात मात्र एव उर्वश्या किमपि निमित्तं वेक्ष्य मम हस्तेन न्यासकृतः विक्रमोर्वशीयम्। स्थान, महर्षि च्यवन का आश्रम। महर्षि की पत्नी सुकन्या उर्वशी के नवजात को गोद में लिए खड़ी है। चित्रलेखा का प्रवेश। सुकन्या, अच्छा तू आ गई चित्रलेखे, निंदिया मुन्ने की अकस्मात तेरी आहट पाकर यूं उचट गई है, मानो इसके मन में जो अंबर का अंश छिपा है जाग पड़ा हो सुनते ही पदचाप स्वर्ग की भू पर। शब्दार्थ, उचट गई यानी खुल गई, हट गई। पदचाप यानी पैरों की आवाज। प्रसंग, उर्वशी पुत्र जनन के पश्चात पुरुर्वा के यज्ञ कार्य में व्यस्त होने पर च्यवन के आश्रम में समय बिताती है। सुकन्या उर्वशी के नवजात शिशु को गोद में लिए खड़ी है। इस बीच चित्रलेखा का प्रवेश होता है तथा शिशु की नींद उचट जाती है। व्याख्या, सुकन्या चित्रलेखा से कहती है, अरे चित्रलेखा तू आ गई, तेरी आवाज पाकर मुन्ने की नींद उचट गई है, अर्थात सहसा खुल गई है, मानो इसके मन में जो स्वर्ग लोक का अंश निहित है वह पृथ्वी पर स्वर्ग की चरण चाप सुनकर जाग पड़ा हो। यह प्रसून छयमान मही नभ के अद्भुत परिणय का, जाने पिता सदृश रसलोभी होगा छाड़ मही का, या देवता समान मात्र गंधों का प्रेमी होगा। शब्दार्थ, प्रसून यानी फूल, मही नभ यानी धरती आकाश, परिणय यानी प्रेम, छाड़ यानी मिट्टी। व्याख्या, धरती और आकाश के अद्भुत प्रेम से उत्पन्न हुआ यह सुंदर फूल यानी शिशु पता नहीं अपने पिता की तरह धरती पर मिट्टी के रस का लोभी होगा अथवा देवताओं के समान केवल सुगंध से प्यार करेगा। चित्रलेखा, मही और नभ दो हैं ये सब कहने की बातें हैं, खोदो जितनी भूमि शून्यता मिलती ही जाएगी, और व्योम जो शून्य दिखता उसके भी अंतर में भांति भांति के जलद खंड घूमते, और पावस में कभी कभी रंगीन इंद्रधनुषी भी उगाती है। शब्दार्थ, व्योम यानी आकाश, जलद खंड निबादनों के टुकड़े। प्रसंग, प्रस्तुत पद में चित्रलेखा धरती और आकाश के अंतर में समाहित समान गुणों का वर्णन करती हुई दोनों को एक ही सत्ता के दो समान स्वरूप सिद्ध करती है। व्याख्या, धरती और आकाश दो हैं ये सब कहने की बातें हैं, धरती को जितना खोदोगे उतना ही नीचे शून्य मिलता जाएगा, और आकाश जो सर्वथा शून्य अथवा रिक्त दृष्टिगत होता है उसके भीतर भी नाना प्रकार के मेघखंड घूमा करते हैं, और वर्षा ऋतु में कभी कभी उसके हृदय में रंगीन इंद्रधनुष भी निकल आता है। सुकन्या, और इंद्रधनुषी के उगने पर विरक्त अंबर की क्या होती है दशा। शब्दार्थ, विरक्त यानी उदासीन। व्याख्या, सुकन्या चित्रलेखा से प्रश्न करती है कि उदासीन अंबर में रंगीन इंद्रधनुष के निकल जाने पर उसकी क्या मनोदशा होती है। चित्रलेखा, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, योगेश्वर तज योग, तपस्वी तज निदाध, मैं तप को, रूपवती को देख मुग्ध इस भांति दौड़ पड़ते हैं, मानो जो मधुशिखा ध्यान में अचल नहीं होती थी ठहर गई हो वही सामने युवा कामनी बनकर। भूल गई जब किया स्पर्श तुमने ध्यानस्थ च्यवन का, ऋषि समाज से किस प्रकार व्याकुल विलोल जागे थे। शब्दार्थ, निदाघमय यानी कष्टपूर्ण कठोर, मधुशिखा यानी सौंदर्य ज्वाला, युवा यानी जवान नवयुवती, ध्यान में अवस्थित यानी ध्यानस्थ ध्यानलीन, विलोल यानी चंचल। प्रसंग, चित्रलेखा सुकन्या के प्रति अपने भाव प्रकट करती है, कहती है आकाश में इंद्रधनुष आने पर वह योगी अंतरिक्ष उसी प्रकार विकल हो उठता है जैसे सुंदर कामनी को देखकर मुनि तपस्वी विकल हो उठते हैं। व्याख्या, चित्रलेखा कहती है सुकन्या क्या तुम नहीं जानती कि किसी सुंदरी को देख उस पर मोहित होकर योगी वर अपने कठोर योग और तपस्वी अपने कष्ट साध्य तप को छोड़ इस तरह विकल हो दौड़ पड़ते हैं, मानो सौंदर्य की वशिखा जो उसके ध्यान में स्थिर नहीं होती थी नवयौवना कामनी बनकर उसके सामने आ ठहरी हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुमने ध्यानमग्न च्यवन ऋषि का स्पर्श किया था तब वे किस प्रकार व्याकुल तथा चंचल होकर अपनी समाधि से जाग पड़े थे। सुकन्या, किंतु चित्रलेखे मुझको अपनी महर्षि भरता पर ग्लानि नहीं निस्सीम गर्व है। व्याख्या। चित्रलेखा के प्रति सुकन्या अपने विचारों को स्पष्ट करती हुई कहती है कि उसे च्यवन ऋषि से इस कारा की कि उन्होंने उसका सुकन्या का स्पर्श पाकर समाधि खंडित की घृणा नहीं अपितु तो गर्व है। चित्रलेखा। यही गर्व मुझको भी हो आता है अनायास उन तेजवंत पुरुषों पर, बाधक नहीं तपो व्रत जिनके व्यग्र उदग्र प्रणय का, न तो प्रेम ही विघ्न डालता जिसके तपश्चरण में, प्रणय पाश में बंधे हुए भी जो निमग्न मानस से उसी महासुख की चोटी पर चढ़े हुए रहते हैं। जहाँ योग योगी को कवि को कविता ले जाती है और निरंजन की समाज से उन्मीलित आँखों होने पर जिनके दृग दूषते नहीं अंजन वाली आँखों को। शब्दार्थ। अनायास यानी सहसा, तेजवंत यानी तेजस्वी, व्यग्र उदग्र यानी विकल उत्तेजित, तपश्चरण यानी तपश्चर्या तपस्या, निरंजन यानी परब्रह्म, उन्मीलित यानी खुलना, दूषते यानी दोष देते। प्रसंग। इन पंक्तियों में चित्रलेखा योग तथा भोग, तप एवं प्रणय के समन्वय की महत्ता स्थापित करती है। व्याख्या। मुझे भी सहसा उन तेजस्वी पुरुषों पर गर्व होने लगता है जिनकी तपस्या विकल उद्दीप्त प्रेम में बाधा नहीं बनती और न ही जिनका प्रेम उनकी तपस्या में विघ्न डालता है। प्रेम के बंधन में बंधे हुए भी जो रस में डूबे हृदय से उसी परम सुख की चोटी पर चढ़े हुए रहते हैं, जहाँ योग योगी को और कविता कवि को बहा कर ले जाती है, तथा परब्रह्म की समाधि से खुल जाने पर जिनकी आँखें सांसारिक प्रणय में फंसी आँखों में दोष नहीं देखती। तप का कर उत्सर्ग प्रेम पर तपो निधान च्यवन ने, मात्र तुम्हें ही नहीं जगत भर की सीमंतिनियों को अमित अपार त्रिलोक जयी गौरव का दान दिया है। और पुनः यौवन धारण कर उन अमोघ दृष्टा ने दिखा दिया इंद्रिय तर्पण में कोई दोष नहीं है। शब्दार्थ। उत्सर्ग यानी बलिदान, तपो निधान यानी महान तपस्वी, सीमंतिनी यानी स्त्री, अमोघ यानी अपार, दृष्टा यानी ज्ञानी, इंद्रिय तर्पण यानी इंद्रिय सुख। व्याख्या। तपस्वी राज च्यवन ने तप को प्रेम पर बलिदान कर केवल तुम्हें ही नहीं अपितु जगत भर की स्त्रियों को अपार अमर तथा तीनों लोकों को जीतने वाला गौरव प्रदान किया है। और उन परम ज्ञानी ऋषि ने पुनः यौवन धारण कर यह सिद्ध कर दिया है कि इंद्रियों का सुख भोगने में कोई दोष नहीं है। एक प्रेम वह जो विधुषा ऊपर उठता जाता है, होकर बीचों बीच किन्हीं दो ऐसे ताल द्रुमों के जिन वृक्षों ने कभी प्रणय आलिंगन नहीं किया है, और दूसरा वह पढ़कर जिसके रस आलोड़न में दो मानस ही नहीं एक दो तन भी हो जाते हैं। शब्दार्थ। विधु यानी चंद्रमा, ताल द्रुम यानी ताड़ के पेड़, रस आलोड़न यानी प्रेम रस का उमड़ना। व्याख्या। एक तो वह प्रेम होता है जो चंद्रमा के समान ऐसे दो ताल वृक्षों के बीच से होकर ऊपर उठता है जिन वृक्षों ने कभी प्रेम का आलिंगन ही नहीं किया, और दूसरा वह प्रेम है जिसके रसावेश में जकड़ कर दो हृदय ही नहीं दो शरीर भी एक हो जाते हैं। प्रथम प्रेम जितना पवित्र हो पर केवल आधा है, मन हो एक किंतु इस लय से तन को क्या मिलता है। केवल अंतरदाह मात्र वेदना अतृप्त ललक की, दो निधि अंत शुद्ध किंतु संतरस्त सदा इस भय से, बांध तोड़ मिलते ही व्रत की विभा चली जाएगी। अच्छा है मन जले किंतु तन पर तो दाग नहीं है। शब्दार्थ। अंतरदाह यानी हृदय की जलन, अतृप्त यानी अधूरी प्यास, ललक यानी लालसा इच्छा, अंतःक्षुब्ध यानी भीतर से दुखित पीड़ित, संत्रस्त यानी आतंकित, विभा यानी प्रकाश किरण। व्याख्या। पहला प्रेम चाहे जितना ही पवित्र क्यों न हो पर अधूरा है। मन भले ही एक हो लेकिन मन की एकाग्रता से शरीर को कुछ नहीं मिल सकता, केवल मात्र हृदय की जलन असंतोष की वेदना अभिलाषाओं की व्यथा ही तो मिल पाती है। दो हृदय सतत क्षोभ से पीड़ित रहते हैं लेकिन इस भय से सदा आतंकित रहते हैं कि हृदय का बांध टूटते ही तपोव्रत अथवा संयम की ज्योति नष्ट हो जाएगी। अतः अच्छा है मन जलता रहे किंतु शरीर को बेदाग है। मृषा तर्क। मन मलिन हुआ तो तन में प्रभा कहाँ है, तन मन का यह भेद सुकन्ये मुझे नहीं रुचता है। बलिहारी उस पूर्ण प्रेम की जिसकी क्षिप्र लहर में केवल मन ही नहीं अंग संज्ञा भी खो जाती है। शब्दार्थ मृषा यानी झूठ व्यर्थ, प्रभा यानी प्रकाश, क्षिप्र यानी तेज, अंग संज्ञा यानी शरीर की चेतना। व्याख्या। हे सुकन्या, यह विवाद व्यर्थ है। तन मन का यह पारस्परिक भेद मुझे अस्वीकार्य है। तुम ही बताओ, जब मन मलिन होगा तो शरीर के दिव्य होने की संभावना किस प्रकार की जा सकती है? तन मन से समन्वित उस पूर्ण प्रेम की मैं बलिहारी हो जाती हूँ, जिसकी तेज लहर में केवल मन ही नहीं अपितु शरीर की सत्ताएं भी बेसुध हो जाती हैं। धन्य त्रिया वह जो बलिष्ठ नर की पिपासु बाहों में आँख मूंद रसमग्न प्रणय पीड़न असह सहती है, जैसे बहता कुसुम तरंगित सागर की लहरों पर। शब्दार्थ त्रिया यानी नारी, बलिष्ठ यानी उर्जस्वित, प्रणय पीड़न यानी प्रेम की कसक। व्याख्या। वह नारी धन्य है जो ऊर्जस्वित युवक की बेकल भुजाओं में आँख मूंद कर अपना समर्पण कर देती है और रसमग्न होकर उन असह्य प्रेम के पीड़न को उसी प्रकार सहती है जैसे तरंगित सागर की लहरों में पड़ा हुआ एक पुरुष उसके मत्त झमेलों में भी आनंदित होकर झूमता है। विशेष उदाहरण अलंकार। धन्य पुरुष जो वर्ष वर्ष निष्काम उपोषित रहकर जसानल को तीव्र क्षुधा को दीपित कर लेते हैं, सतत भोग रत नर के अजाने तीक्ष्ण स्वाद जीवन का, उसे जानता वह जिसने कुछ दिन उपवास किया हो, सदा छाह में पली प्रेम यह भोग निरत प्रेमी का, परियोगी का प्रेम धूप से छाया में आना है। शब्दार्थ निष्काम यानी लालसा रहित, उपोषित यानी उपवास व्रत, जठरानल यानी पेट की आग, क्षुधा यानी भूख, दीपित यानी ज्योतिमान, सतत यानी निरंतर, भोगरत यानी भोग में निमग्न, तीक्ष्ण यानी कषाय पैना, भोग निरत यानी भोग में लगे हुए। प्रसंग। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने चित्रलेखा के मुख से शरीर में निहित प्रेम की दो स्थितियों भोग निरत प्रेम योगी प्रेम का अंतर स्पष्ट किया है। व्याख्या। वे पुरुष धन्य है जो वर्षों तक निष्काम उपवास धारण करके अपने पेट की आग को तीव्र तथा भूख को अधिक प्रज्वलित कर लेते हैं। भली निरंतर भोग लिप्सा में लिप्स व्यक्ति जीवन के तीक्ष्ण स्वाद को क्या जानेगा? उसे तो केवल वही व्यक्ति जान सकता है इसने कुछ दिन तक उपवास करके देखा हो। सतत भोग में निरत प्रेमी सर्वदा छाया में निवास करने का आकांक्षी रहता है, अर्थात वासनालिप्त व्यक्ति कभी भी वियोगाग्नि को सहने में समर्थ नहीं होते, जबकि प्रेमी योगी सा स्वभाव सदा धूप से छाया की ओर आना है, अर्थात वह तब तक प्रेम के शीतल बयार में अपना सर्वस्व समर्पण नहीं करता जब तक प्रेम की साधना में तप कर सोना न हो जाए। विशेष इस प्रकार भोग रसी रस प्रेमी प्रेम की सिद्धावस्था तथा योगी प्रेमी साधनावस्था से सिद्धावस्था की सोपान को अधिक श्रेयस्कर समझता है। सुकन्या। एक चारणी मैं क्या जानूं स्वाद विविध भोगों का, मेरे तो आनंद धाम केवल महर्षि भरता है, योग भोग का भेद अप्सरा की अवंध क्रीड़ा है, गृहिणी के तो परम देव आराध्य एक होते हैं, जिससे मिलता भोग योग भी वही हमें देता है, क्या कुछ मिला नहीं मुझको दैता महर्षि की होकर। शब्दार्थ एक चारणी यानी पतिव्रता, अबंध यानी मुक्त स्वच्छंद आजाद, क्रीड़ा यानी खेल, दैता यानी पत्नी प्रेयसी। व्याख्या। मैं पतिव्रता स्त्री भला विविध भोगों के स्वादों को क्या जानूं, मेरे आनंद धाम पतिदेव तो केवल मेरे महर्षि ही हैं, योग भोग के इन विभिन्न आनंदों को तो स्वच्छंद विहार करने वाली अप्सराएं ही जान सकती हैं, गृहिणी का तो अपना एक ही परम आराध्य देव होता है जिससे उसे योग तथा भोग दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, भला महर्षि की पत्नी तथा प्रेयसी बनकर योग अभोग में से मुझे क्या नहीं मिला, अर्थात प्रेम की समन्वित पीयूष धारा का मैं आनंद विहोर होकर पान कर रही हूँ। शिखर शिखर उड़ने में जाने कौन प्रमोद लहर है, किंतु एक तरुसे लग सारी आय बिता देने में, जो प्रफुल्ल धन गहन शांति है वह क्या कभी मिलेगी नए नए फूलों पर नित उड़ती फिरने वाली को। शब्दार्थ प्रफुल्ल यानी प्रसन्न। व्याख्या। नारी को अपनी कल्पना के पंख फैलाकर शिखर शिखर उड़ने में न जाने कौन सा आनंद प्राप्त होता है। मेरी मति में तो एक वृक्ष यानी पति का आश्रय लेकर अपना संपूर्ण जीवन बिताने में जो मन प्रसन्न होता है, चित्त शीतल होता है और गहन शांति मिलती है, वह भला नित्य प्रति नए नए फूलों पर यानी पुष्पों पर उड़ने वाली रमणी को कहाँ प्राप्त हो सकती है। नहीं, एक से अधिक प्राण नारी के भी होते हैं तो फिर वह पालती खिलाकर क्या विभिन्न पुरुषों को, और पुरुष कैसे जी लेता पाए बिना हृदय को। व्याख्या, नारी के भी एक से अधिक प्राण नहीं होते, फिर भला वह क्या खिलाकर अलग अलग पुरुषों को खिलाती है, और पुरुष भी नारी के हृदय को पाए बिना किस प्रकार जीता है। स्यात् मात्र छु भित्ति योषिता के शरीर मंदिर की, धनु प्रसून उन्नत तरंग की जहाँ चित्रकारी है, पर ए चित्र अचिर भावों के धनुष सिकुड़ जाएंगे, छूटेगी अरुणिमा कपोलों के प्रफुल्ल फूलों की, और वक्ष पर जो तरंग यौवन की लहराती है, पीछे समतल छोड़ जरा में जाकर खो जाएगी। शब्दात स्यात यानी शायद संभवतः, भित्ति यानी दीवार शरीर, योषिता यानी नारी स्त्री, शरीर मंदिर यानी शरीर रूपी भवन, धनु यानी धनुष कटाक्ष, प्रसून यानी फूल कपोलों की अरुणिमा से तात्पर्य है, उन्नत तरंग ऊंची लहरें यानी उन्नत उरोध से तात्पर्य है, अचिर यानी अस्थाई, जरा यानी बुढ़ापा। व्याख्या, संभवतः मनुष्य नारी के शरीर रूपी मंदिर में चित्रित मनुष्य भाव प्रसून यानी कपोलों को अरुणिमा तथा उन्नत तरंग यानी उज्जसित वक्त से आकर्षित होकर ही हृदय की चिरमहत्ता को भूल जाता है, लेकिन ये सारे चित्र नाशवान हैं। एक दिन जब इसे जवानी ले जरा आगे चलकर बुढ़ापा कदम रखेगा, तो ये भावों के बंधन सिकुड़ जाएंगे, विकसित अरुणिम पुष्पों के समान कपोलों की लाली छूट जाएगी, और वक्ष पर उरुणों के कारण जो आकर्षित करने वाली उन्नत तरंग दिखाई दे रही है वह समतल हो जाएगी। तब फिर अंतिम शरण कहाँ उस हतभागी नारी की, यौवन का भग्नावशेष वह तब फिर किसे रुचेगा, यहाँ देव मंदिर में भी तब तक ही जम जाते हैं जब तक हरे भरे मृदु हैं पल्लव प्रसून तोरण के, और भित्तियों के ऊपर सुंदर सुकुमार त्वचा है, टूट गया यदि हर्म देवता का भी आशुमरण है। शब्दात हतभागी यानी भाग्य की मारी हुई, भग्नावशेष यानी खंडहर, हर्म यानी भवन, अंतःपुर यानी आशु, सद्य यानी तुरत। व्याख्या, फिर उस गलित यौवना भाग्यहीना नारी की अंतिम शरण कहाँ है, उसके यौवन के खंडहर जरा के आने पर फिर किसको रुचित कर लेंगे, देव मंदिर में भी लोग तभी तक जाते हैं जब तक उसका तोरण हरे भरे फूल कोमल फूल पत्तों से सजा होता है, और उसकी दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की त्वचा चढ़ा रहती है। यदि देव भवन खंडित होगा तो उसके भीतर के देवता का हिमन शीघ्र ही हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ जब तक हरा भरा उपवन है, किसी एक के संग बांध लो तार निखिल जीवन का, न तो एक दिन वह होगा जब गलित म्लान अंगों पर क्षण भर को भी किसी पुरुष की दृष्टि नहीं गिरनेगी। बाहर होगा विजन निकेतन भीतन प्राण तजेंगे, अंतर के देवता तृषक भीषण हाहाकारों में। शब्दार्थ उपवन यानी बाग, गलित यानी गले हुए, नष्ट यानी क्षीण, म्लान यानी मैले, विरमेगी यानी रमेगी अटकेगी, विजन यानी शून्य सूना, निकेतन यानी घर भवन शरीर। व्याख्या, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब तक तुम्हारी यौवन का बाग हरा भरा है, अपने संपूर्ण जीवन का तार किसी एक पुरुष प्रेमी के साथ बांध लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब कांतिहीन मलिन अंगों पर क्षण भर के लिए भी किसी पुरुष की दृष्टि नहीं आकर जमेगी। बाहर शरीर का शून्य जंगल होगा, और हृदय में अंतर के देवता आंतरिक अनुभवन भयंकर करुण हाहाकार कर प्राणों को छोड़ देंगे, छटपटाएंगे।